हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधिक अभी तक आंशी को उस एरिया में ढूंढ रहा था। रॉबिन और मेलिसा अभी तक वहीं पर मौजूद थे। पूरी रात अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने के बाद भी उन लोगों को वो नहीं मिली। सुबह विधिक अपने होटल में था, उसके साथ रॉबिन और मेलिसा भी थे। उन्होंने उस लड़का और लड़की को बुलाया जिन्हें उन्होंने मैरिज हॉल के बाहर पकड़ा था। मैंने तो पहले ही कहा था, वो लड़की और लड़का ही इस होटल में आए थे। जरूर वो दोनों सीक्रेट एजेंट होंगे। वो अभी कुछ देर में आते ही होंगे, तुम देखकर कन्फर्म कर लेना, रॉबिन बोला। वो लड़की कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है, सिर्फ वो लड़का ही है। पिछले 2 घंटों से हम तुम्हारे आदमियों का इंतजार कर रहे हैं। कब तक आएंगे वो लोग? विधिक ने परेशान स्वर में पूछा। आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं होती। जरूर तुम्हारी दुश्मन होगी, तभी तुम उसके लिए इतने बेकरार हो रहे हो। मेलिसा को विधिक की हालत देखकर हैरानी हो रही थी। उसने आज से पहले कभी उसे इतना परेशान नहीं देखा था। वो जो भी हो, उससे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, विधिक ने जवाब दिया। वो वहाँ खड़े होकर बहस कर रहे थे, तभी रॉबिन के आदमी उन दोनों के साथ वहाँ पहुँचे, जिन्हें उन्होंने मैरिज हॉल के बाहर आंशी और अमन समझकर किडनैप किया था। उन दोनों के वहाँ आने पर विधिक उन्हें गौर से देख रहा था। उस लड़की ने आंशी के कपड़े पहने थे, तो वही उस लड़के ने अमन के। विधिक ने अमन को सामने से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने उसके कपड़ों को पहचान लिया था। उन दोनों को देखकर उन्होंने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, ये दोनों वो नहीं हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम उन दोनों से मिले जरूर थे, हमने उनसे हेल्प मंगी थी। पहले उस लड़के ने साफ मना कर दिया, पर उस लड़की के समझाने पर उसने हमारी हेल्प करने के लिए हाँ कह दी थी। हमने उनसे उनके कपड़े लिए थे, लड़की रोते हुए बोली। तुम दोनों ने आखिरी बार उन्हें कहाँ छोड़ा था? विधिक ने पूछा। हमने उन्हें मैरिज हॉल में छोड़ा था। हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर हम दोनों ही किसी और को पसंद करते हैं। हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि शादी से भाग जाएंगे, बट हमें पहले मौका नहीं मिला। बाद में वो दोनों हमें मिले और उन्होंने हमारी हेल्प की। हमें नहीं पता था कि वो दोनों अपनी मुसीबत हम पर डाल देंगे, लड़के ने बताया। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ वाली लड़की बोली, उन दोनों ने हम दोनों की शादी के कपड़े पहने थे ताकि किसी को शक ना हो। हमने मैरिज हॉल के हर एक कपल से अच्छे से पूछताछ की थी। वहाँ सभी एक दूसरे से प्यार करते थे। कन्फर्मेशन के लिए हमने अपनी आँखों के सामने वहाँ मौजूद हर कपल की शादी करवाई थी, रॉबिन ने बताया। मुझे लगता है वो दोनों मौका देखकर भाग गए होंगे, मेलिसा बोली। दुआ करना ऐसा ही हो, वरना उन दोनों की शादी हो गई तो सबसे पहले तुम दोनों की जान लूंगा, विधिक ने गुस्से में कहा। उसने फिर उन दोनों लड़का लड़की की तरफ देखा और अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को जाने दो, ये जिससे भी शादी करना चाहते हैं सेफली उन तक उन्हें वहाँ पहुँचा दो। उन्हें ऑर्डर देने के बाद विधिक वहाँ से चला गया। विधिक पहली बार किसी के साथ नरमी बरत रहा था। ये देखकर रॉबिन और मेलिसा दोनों ही हैरान थे। इसे कब से दूसरों की परवाह होने लगी, मेलिसा ने रॉबिन की तरफ देखकर कहा। मैं नहीं जानता, और अब इसे छोड़ो, हमने जो प्लान बनाया है उस पर काम करते हैं, मेलिसा ने रॉबिन की बात पर हामी भरी और दोनों वहाँ से चले गए। अमन आंशी के साथ सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिस पहुँच चुका था। आंशी ने देखा वहाँ हर कोई अपने काम लगा हुआ था, किसी ने एक बार भी नज़र उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। आंशी वहाँ पहली बार आई थी, इसलिए वो अमन के पीछे पीछे चल रही थी। अमन उसे एक कमरे में लेकर गया। वो एक नॉर्मल साइज का साउंड प्रूफ कमरा था, जहाँ बेंच और कुछ कुर्सियों के अलावा और कुछ नहीं था। सिक्योरिटी के लिए वहाँ 2 CCTV कैमराज लगे हुए थे। स्टेटमेंट देने वाले इंसान की रिकॉर्डिंग करने के लिए पास में एक अलग से कैमरा सेट किया हुआ था। उस कमरे में आते ही आंशी को घबराहट होने लगी। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अमन ने उसका हाथ सहला कर कहा। हाँ तुम हो, तभी आज मुझे इस तरह की जगह पर आना पड़ा। तुम मुझे अरेस्ट करके यहाँ लेकर आए हो ना, आंशी ने घबराई आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, इस बार जवाब अमन के बजाय दिया था। वो दबे कदमों से वहाँ अंदर आए, आंशी को एहसास तक नहीं हुआ। आंशी उनकी तरफ पलटी, उसके दल का डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मिस्टर दत्त के बाद अमन की पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। उन सब के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ जस ने आंशी को देखकर हल्की मुस्कुराहट दी। मिस्टर दत्त ने उसके पास आकर कहा, घबराओ मत बच्चे, हम लोग ऐसे ही बदनाम हैं, बाकी तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत नहीं होने वाला। जस ने मुझे बताया कि तुम रात को काफी डरी हुई थी, बेफिक्र होकर अमन को सब कुछ बता दो। तुम जिस टॉर्चर को लेकर घबरा रही हो वो आतंकवादियों के साथ किया जाता है। मिस्टर दत्त की बातों से आंशी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने जवाब में जस की तरफ इशारा करके कहा, क्या मैं अपना बयान उसे दे सकती हूँ? आंशी की बात सुनकर सब कोई जस की तरफ हैरानी से देख रहा था। जस ने जवाब में कहा, मैं टेक वर्क संभालता हूँ, ब्रो के अलावा तुम अपना स्टेटमेंट लावण्या को दे सकती हो, बट आई थिंक ब्रो ही बेटर रहेंगे। आंशी ने उनकी बात पर हामी भरी। एक एक करके सब वहाँ से चले गए थे। उस कमरे में आंशी और अमन के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उसे कंफर्टेबल करने के लिए मिस्टर दत्त ने उसके लिए कॉफ़ी और जूस के साथ में कुछ खाने का सामान भिजवाया था। उन सबको देखने के बाद आंशी ने कहा, कहीं तुम लोगों ने इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे खाने पीने के बाद इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। उसकी बात सुनकर अमन मुस्कुराया। उसने वहाँ मौजूद हर एक खाने पीने की चीज़ को टेस्ट किया और फिर आंशी के सामने कर दिया। अगर इसमें कुछ मिला भी है तो तुमसे पहले मुझे कुछ होगा, तुम बेफिक्र होकर कुछ भी ले सकती हो। सब कुछ तो झूठा कर दिया और मुझे बोल रहे हो कि कुछ भी ले सकती हो, आंशी ने बड़बड़ा कर कहा। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम यहाँ कम्फर्टेबल हो गई हो, अमन ने गंभीर आवाज में कहा। अब वो उससे प्रोफेशनली बात करने जा रहा था। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और इसी के साथ किसी दूसरे कमरे में मौजूद मिस्टर दत्त और अमन की टीम के सामने की स्क्रीन ऑन हो गई। अमन ने गंभीर आवाज में पूछा, मिस आंशी जिंदल, तुम विधिक राणा को कैसे जानती हो? मैं उससे पेरिस में एक्सीडेंटली मिली थी। मेरे साथ मेरे तीन दोस्त थे, हम लोग वहाँ वेकेशन के लिए गए थे और हमारे पैसे खत्म हो गए थे। एट लास्ट हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हमने होटल से बिना बताए चेकआउट करने का सोचा। वहाँ के मैनेजर को सब पता चल गया और वो हमारा फायदा उठाना चाहता था। विधिक राणा भी उसी होटल में रुका था, हम पहले भी उससे टकराए थे। न जाने कैसे विधिक को सब पता चला और उसने हमारी हेल्प की, उसने वो होटल खरीद लिया। साथ रहते हुए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। आंशी अमन को वही सब कहानी बता रही थी जो उसने अर्जुन को बताई थी। यही सेम कहानी विधिक ने दिव्याना को बताई थी, इस वजह से वो सब उसके बारे में जानते थे। उसके साथ रहते हुए मुझे उससे प्यार हो गया। मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं पता था वो क्रिमिनल है। मैंने अपने तीनों दोस्तों की मौत एक्सीडेंटल समझा। उसके साथ रहते हुए मैं सब कुछ भूलने भी लगी। फिर तुम्हें पहली बार कब पता चला कि तुम जिससे प्यार करती हो वो एक क्रिमिनल है या उसी ने तुम्हारे दोस्तों को मारा है? तुमने मलिक नाम के आदमी का जिक्र किया, वो आदमी अब कहाँ है?
जवाब देने से पहले आंशी हिचकिचा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अमन ने उसके डर को नोटिस किया और कहा, हमें काफी देर हो गई है, तुम चाहो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया। अमन ने कैमरा बंद कर दिया। कैमरा बंद करते ही उसने पूछा, तुमने अब तक सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, आगे भी मत घबराओ, क्या कुछ ऐसा हुआ था जो तुम कैमरे के सामने नहीं बताना चाहती? मुझे डर लग रहा है, अपनी बात खत्म करके आंशी रोने होने लगी। अमन ने अपना रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। रिकॉर्डिंग कहीं और प्ले नहीं होगी, हमारी टीम के अलावा कोई इसे कोई और नहीं सुनेगा, तुम बता सकती हो जो भी हुआ था। देखो आंशी, अगर तुमने सब कुछ हमें नहीं बताया तो तुम इस केस में फंस सकती हो, तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो सच बताना होगा। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे आगे की कहानी बताने लगी। अमन ने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। तुम्हें उसके बारे में सब सच का पता चला? अमन ने अगला सवाल पूछा। मुझे विधिक के घर पर रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं हैरी, प्रिंस और सृष्टि की मौत को एक्सीडेंट समझकर आगे बढ़ने लगी। इस बीच हम दोनों ने सगाई कर ली थी। हम दोनों घूमने के लिए कई बार बाहर भी गए। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता था, मेरे लिए वो मेरा सब बन गया था। आंशी उसे उस रात के बारे में बताने लगी जब उसे पहली बार विधिक का सच पता चला था। पिछले 6 महीने उसके विधिक के साथ बहुत अच्छे से बीते थे।